नमस्कार भारत, आज है फरवरी की 5 तारीख दिन सोमवार। सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। पश्चिम अफ्रीका में चालक दल के 22 भारतीय समेत एक टैंकर हुआ लापता, शक की सुई समुद्री लुटेरों पर। भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी में भारतीय सेना के 4 जवानों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी की परिवर्तन रैली कर्नाटक में कितना परिवर्तन कर पाएगी?
वो एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, पर ये कहना कि उनको सुन के वोट मिल जाएगा या लोग अपना चुनाव उनके क्लियर करेंगे, वो जरा मुश्किल है।
और सुनिए कत्ल की वो वारदातें जिन्होंने खोली पाकिस्तान में लोगों की जुबान।
अब हर भरने वाले के वारिस आहिस्ता आहिस्ता सामने आके ये सवाल उठा रहे हैं कि जब अदालत मौजूद है तो एनकाउंटर की क्या जरूरत है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी में बेनिन तट से तेल का एक टैंकर चालक दल के 22 भारतीय नागरिकों समेत लापता हो गया है। गुरुवार के बाद इस टैंकर के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस घटना पर चिंता जताई है। भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय सेना का कहना है कि नियंत्रण रेखा के पास राजपुरा सेक्टर में रविवार को पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी में भारतीय सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में राजौरी सेक्टर में सीमा के आसपास कई इलाके भी प्रभावित हुए हैं। उत्तरी सीरिया के कुर्द नियंत्रण वाले इलाके अफरीन में रविवार को हजारों की संख्या में लोगों ने तुर्की की सैन्य कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। स्थानीय प्रशासन ने एक बयान जारी कर विश्व समुदाय से अपील की कि वे तुर्की से अपनी सैन्य कार्रवाई रोकने की बात करें। साथ ही उन्होंने उत्तरी सीरिया के हालात के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया। पिछले 2 हफ्तों से तुर्की ने उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों को खदेड़ने के मकसद से अपना सैन्य अभियान शुरू किया हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में झंडे पकड़े हुए थे और वे ड्रम बजाते हुए नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन में हिस्सा लेने आई एक महिला ने कहा, हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे, हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम उनके आगे कभी भी नहीं डरेंगे। ये थे प्रदर्शन में हिस्सा लेने आई एक महिला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मालदीव में राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। रविवार को मालदीव की सड़कों पर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने अपने 9 सांसदों को रिहा करने के लिए नारेबाजी की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन 9 सांसदों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं अटॉर्नी जनरल ने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है और सुरक्षा बलों से कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन ना करें। ग्रीस की राजधानी एथेंस में रविवार को बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन ग्रीस के उत्तरी छोर पर बसे एक देश के जरिए मैसेडोनिया शब्द का इस्तेमाल करने की वजह से किया गया। ग्रीस की जनता ने अपनी सरकार से अपील की है कि वह मैसेडोनिया पर किसी तरह का समझौता ना करे। प्रदर्शनकारी सड़कों पर नारे लगाते रहे कि मैसेडोनिया का मतलब है ग्रीस। ग्रीस के उत्तरी प्रांत का नाम मैसेडोनिया है, वहीं उसके उत्तरी छोर में बसे एक देश ने भी अपने नाम के साथ मैसेडोनिया जोड़कर युगोस्लाव रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया कर लिया है और इसी बात से ग्रीस के नागरिक नाराज हैं। प्रदर्शन में मौजूद एक स्थानीय पत्रकार ने कहा, यहाँ लोगों की सिर्फ एक मांग है और वह बिल्कुल स्पष्ट है कि मैसेडोनिया का सीधा सा अर्थ ग्रीस के साथ जुड़ा हुआ है और वो इसमें कोई समझौता नहीं कर सकते। अगर यह नाम पड़ोसी देश के जरिए इस्तेमाल होता है तो यह ग्रीस के इतिहास के साथ खिलवाड़ होगा। यह थे प्रदर्शन में मौजूद एक स्थानीय पत्रकार के शब्द। दक्षिण अफ्रीका से ऐसी खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। प्रिटोरिया में जैकब जुमा ने अपने निवास में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद ये फैसला किया। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे जुमा पर पद छोड़ने का दबाव बना हुआ है। इसके साथ ही ऐसे खबरें भी हैं कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के नेता अपने अगले कदम पर चर्चा करने के लिए आज एक आपातकालीन बैठक भी कर सकते हैं। अमरीका के साउथ कैरोलिना के गवर्नर ने बताया है कि एक पैसेंजर ट्रेन के गलत ट्रैक पर चलने की वजह से उसकी टक्कर उस ट्रैक पर पहले से ही खड़ी मालगाड़ी से हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 100 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दोनों मृतक रेलवे के ही कर्मचारी थे। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की पहली सभा नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल पर फेसबुक पर भी लाइव। आज आपके साथ मैं संदीप सोनी। कार्यक्रम की शुरुआत आज कर रहे हैं अफ्रीका से, जहां 22 भारतीय लापता हो गए हैं। ये सभी एक टैंकर के चालक दल के सदस्य हैं। टैंकर में सवार थे, समंदर में थे जहां ये भारतीय और टैंकर लापता हुआ है। समुद्री लुटेरों का इलाका है, इसलिए शक की सुई समुद्री लुटेरों पर ही जा रही है। bbchindi.com के हवाले से इस खबर पर और जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी नवीन नेगी स्टूडियो में मौजूद हैं। नवीन, बताइए कहाँ की ये घटना है और ये मामला दरअसल है क्या?
ये घटना है गल्फ ऑफ गिनी, यानी कि गिनी की खाड़ी की। सबसे पहले अपने श्रोताओं को हम बताते हैं कि दुनिया के नक्शे में यह जगह कहाँ पर आती है। तो गल्फ ऑफ गिनी दरअसल पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश बेनिन की एक खाड़ी है। बेनिन नाइजीरिया से सटा हुआ एक देश है और गल्फ ऑफ गिनी यानी कि गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। खबर यह है कि 22 भारतीय नागरिकों के साथ तेल का एक टैंकर शुक्रवार से लापता हो गया है। आखिरी बार इस टैंकर के साथ टैंकर को शुक्रवार को सुबह 3:30 बजे उससे संपर्क हो पाया था और उस समय यह टैंकर बेनिन के तट पर देखा गया था, लेकिन उसके बाद से इस टैंकर से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस टैंकर को समुद्री लुटेरों ने अपने कब्जे में कर लिया होगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से इस इलाके में समुद्री लुटेरे काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है जब इसी इलाके में समुद्री लुटेरों ने एक अन्य जहाज को अगवा कर लिया था, जिसे 6 दिन बाद फिरौती के बदले में छुड़वाया गया था।
नवीन, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर कुछ जानकारी आई है सामने?
जी बिल्कुल, भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस टैंकर के लापता होने पर चिंता जाहिर की है और उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि सरकार इस घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए है। इसके अलावा उन्होंने नाइजीरिया और बेनिन के प्रशासन से भी संपर्क करने की कोशिशें की हैं और लापता जहाज को तलाश करने की कोशिशें जारी हैं।
नवीन, इस बारे में कुछ पता चला है कि जो लोग इस टैंकर पर सवार थे, जो भारतीय इस टैंकर पर सवार थे जो अब लापता हो गए हैं, वो उनके नाम क्या हैं, वो भारत में कहाँ के रहने वाले हैं, कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर सामने आई है अभी?
अभी तक फिलहाल इस बारे में तो कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं मिल पाई है कि वो 22 भारतीय नागरिक किस जगह से थे या उनके नाम क्या थे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन टैंकर के बारे में एक जो सूचना है कि वो इंटरनेशनल मरीन टाइम ब्यूरो ने बताया है कि इस टैंकर में 13,500 टन गैसोलीन भरी हुई थी।
और गैसोलीन का टैंकर और भारतीय दोनों का अभी कोई अता पता नहीं है।
जी, अभी तक कोई अता पता नहीं।
bbchindi.com के हवाले से इस खबर पर और जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी नवीन नेगी आपके सामने अभी मौजूद थे और इस खबर पर जैसे जैसे अपडेट हमें मिलेगा आप bbchindi.com पर आकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। नमस्कार भारत में अब हम रुख कर रहे हैं भारत प्रशासित कश्मीर का, जहां भारतीय सेना का कहना है कि नियंत्रण रेखा के पास राजपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की ओर से गोलीबारी की गई है। इसमें भारतीय सेना का एक अधिकारी और 3 जवान, कुल 4 लोग मारे गए हैं। इस खबर पर और जानकारी के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले श्रीनगर फ़ोन लगाया बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से। क्या और जानकारी है, जानना चाहा।
जी देखें, जो भारत की सेना है उनके यहाँ कश्मीर में स्थित प्रवक्ता का कहना है कि पीजी सेक्टर जो जम्मू क्षेत्र में आता है वहाँ पे कल जो है अनप्रोवोक्ड शेलिंग और स्मॉल आर्म फायर किया गया पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें अधिकारी समेत 4 सैनिक जो हैं वो मारे गए हैं। लेकिन ये सारा सिलसिला जो है कोई 2 हफ्तों से जारी है और इसमें कम से कम 50,000 नागरिक जो जम्मू क्षेत्र में जहाँ भी LOC जाती है, जहाँ से भी ये नियंत्रण रेखा है, वहाँ के निकटतम इलाकों में रहने वाले लोगों ने जो है पलायन कर लिया है और कम से कम 50,000 ऐसे लोग हैं जो या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं या तो कैंप्स में रह रहे हैं जो स्कूलों वगैरह में कायम किए गए हैं।
रियाज, ये बताइए कि अभी जो रात बीत गई है, अब सुबह हो गई है, बीती रात भी किसी तरह की गोलीबारी की कोई खबर आई है इस तरह की?
जी नहीं, कल जब ये घटना घटी है तो उसके बाद से जो है एक तरह का लल है और रात में किसी तरह की गोलीबारी की खबर तो नहीं आई है। लेकिन ऐसा है कि इस क्षेत्र में गोलीबारी होती रहती है, या तो रात में होती है या सुबह सवेरे होती है या शाम ढलते ही होती रहती है, लेकिन अभी तक सेना की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि इस घटना के घटने के बाद अभी तक एक तरह का लल पाया जाता है।
भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी में भारतीय सेना के 4 जवानों की मौत, इस खबर पर और जानकारी दे रहे थे श्रीनगर से बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर। वहीं रेडियो पाकिस्तान ने पाकिस्तान की सेना के हवाले से खबर दी है जिसमें कहा गया है कि भारत ने बिना किसी उकसावे के रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की, जिसका पाकिस्तान की सेना ने जवाब दिया है।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
कुछ ही महीनों के बाद भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जहां कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन यात्रा रैली को संबोधित करके चुनावी बिगुल फूंक दिया है।
हमारी सरकार गरीब की, मध्यम वर्ग की जिंदगी आसान बनाने, ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इन योजनाओं से कर्नाटक के लोगों को भी बहुत बड़ा फायदा पहुंचा है। और मैं ये भी बता दूं, अगर अनुकूल सरकार होती तो ये फायदा अनेक गुना ज्यादा पहुंचता।
कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी ने कन्नड़ भाषा में जनता का अभिवादन किया और तमाम तरह के वादों के साथ अपने इरादे जताए, लेकिन कितना असरदार रहा मोदी का भाषण जानने के लिए हमारे सहयोगी आदर्श राठौड़ ने बेंगलुरु में वरिष्ठ पत्रकार त्यागराज शर्मा से बात की।
उन्होंने ऐसा नया नहीं बोला जो पहले नहीं बोला था। इस बजट में उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए थे जो हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, फार्मर्स के लिए, वो थोड़ा नया था यहाँ के लोगों को बताने के लिए। हालांकि उन्होंने पहले भी भ्रष्टाचार के बारे में काफी बोला है, खासकर सित्रा में गवर्नमेंट के खिलाफ। पहली बार उन्होंने कहा है कि इसको आप 10% कमीशन की सरकार कह सकते हैं। और मेरे को ये खासकर इसलिए जरा इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि ये जयललिता के बारे में कहा जाता था जब 1992-95 के बीच में उनकी सरकार चल रही थी, तो जयललिता की सरकार को 10% कमीशन की सरकार के नाम से जाना जाता था। पहली बार इन्होंने सरकार करप्शन को क्वांटिफाई कर दिया है। वो एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, लोग पसंद करते हैं उनको, पर ये कहना कि उनको सुन के वोट मिल जाएगा या लोग अपना चुनाव उनके करेंगे, वो जरा मुश्किल है।
उज्ज्वला योजना के बारे में कितने लोगों को फायदा पहुंचा, इसके वो आंकड़े गिनाने लगे, साथ ही साथ किसानों के लिए जो योजनाएं लाएगी उसका जिक्र करते रहे। असल में कर्नाटक में लोगों को कितना फायदा हुआ है इन योजनाओं से,
ग्राउंड लेवल पे जाके देखने वाली बात है। तो इस समय ये कहना कि भी सफल हुआ है या नहीं हुआ है, पर एक जो केंद्र सरकार को, सिद्धरमैया गवर्नमेंट को पीटने के लिए कह सकते हो या इस व्यवहार करने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है कि ये सब नहीं हुआ। हाँ, काफी विषयों में जो सिद्धरमैया सरकार पिछड़ गई है, कुछ डेवलपमेंट वर्क जो सेंटर के यहाँ से आने थे, पैसा दिया गया था, इसका बार बार जिक्र होता रहा है। अमित शाह भी जब यहाँ आए हैं तो उन्होंने भी काफी आरोप लगाए थे और कांग्रेस उन आरोपों से तिलमिला गई थी। इसीलिए कल भी उन्होंने, गुंडू राव ने जो वर्किंग प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, आरोपों का खंडन करने का प्रयत्न किया था। इस समय बीजेपी के पास जो मुद्दा करप्शन का लेके बात कर रहे हैं उसमें भी ज्यादा तूल नहीं है, क्योंकि येदियुरप्पा की बात कर रहे हैं तो ये जरा बात जमती नहीं है। और मैं नहीं समझता कि लोग भूल गए हैं कि येदियुरप्पा के जमाने उनकी सरकार थी, भ्रष्ट सरकार मानी जाती थी।
हाल ही में राजस्थान में बाई इलेक्शन हुए तो उसमें बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, तो इसका भी क्या प्रभाव पड़ा है कर्नाटक में, क्या इसकी भी चर्चा हो रही है?
नहीं, अभी तक तो नहीं हो रही है। जो भी चर्चा ये है ये नेताओं तक ही सीमित है और मैं नहीं समझता कि आम आदमी इससे प्रभावित होगा। 2-3 महीने रह गए हैं जो चुनाव के लिए, धीरे धीरे जिस तरह माहौल बनता जाएगा और जिस तरह एक दूसरे पर पार्टी आरोप लगाती रहेंगी, और जो आम आदमी है जो चुनाव में जाएगा, जो अपना वोट देगा, वो मेरे को नहीं लगता इन वर्षों पर ज्यादा विचार करता।
प्रधानमंत्री मोदी की परिवर्तन रैली कर्नाटक में कितना परिवर्तन कर पाएगी, विश्लेषण कर रहे थे बेंगलुरु से वरिष्ठ पत्रकार त्यागराज शर्मा।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड, यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
नमस्कार भारत, बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। भारत में इस समय वक्त हुआ है सुबह के 6:45। कार्यक्रम में आगे कत्ल की वो वारदातें जिन्होंने खोली पाकिस्तान में लोगों की जुबान, और साप्ताहिक खेल खिलाड़ी भी सुनेंगे आप। लेकिन आइए पहले जानते हैं दिल्ली से छपने वाले आज के अखबार क्या क्या खबरें बयां कर रहे हैं। नवीन नेगी मेरे सहयोगी कई अखबार लेकर स्टूडियो में मेरे ठीक सामने बैठे हुए हैं।
जी संदीप जी, आज के तमाम अखबारों में जो सबसे ज़्यादा एक खबर छाई हुई है वो कल पाकिस्तानी सेना की तरफ से भारतीय सेना पर जो हमला हुआ है।
नहीं, पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत ने बिना उकसाने के गोलीबारी की, और यही भारत का भी कहना है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप कई दिनों से चल रहे हैं। जाहिर तौर पर ये खबर तमाम अखबारों में होगी। इसके अलावा और क्या खबरें देख रहे हैं आप?
इसके अलावा मैं देख पा रहा हूँ इंडियन एक्सप्रेस ने अपने फ्रंट पेज पर दो कॉलम की खबर छापी है जो प्रधानमंत्री मोदी ने कल चुनावी रैली जो कर्नाटक में की थी उससे जुड़ी हुई। और अखबार लिखता है कि इस रैली में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता टमाटर, प्याज और आलू बताया है।
TOP
जी, TOP आपने पहले ही उसको जो है अंदाज़ा लगा लिया टमाटर प्याज और आलू का, तो हम अपने श्रोताओं को बताएं कि TOP क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा कि सरकार जो है किसानों की खुशहाली के लिए लगातार काम कर रही है, और इसलिए उनकी सरकार की जो TOP यानी कि टॉप प्रायोरिटी है, टॉप प्राथमिकता जो है वो है टमाटो, ऑनियन और पोटैटो, ये उनकी प्राथमिकता है। और अगर इन तीन चीज़ों पर किसान काम करेंगे और किसान जो है लगातार टमाटरों का, प्याज का और आलू का जो है अच्छी पैदावार करेंगे तो देश में खुशहाली बनी रहेगी, ये कहना है।
वैसे दिल्ली में प्याज 60 रुपये किलो मिल रही है इस समय।
जी, तो खुशहाली कहाँ से आ रही है और आंसू किसके बह रहे हैं ये तो श्रोता भी जान रहे हैं, हम भी जानते हैं।
और क्या छपा है बताइए?
हिंदुस्तान टाइम्स को अगर देखें तो उसके फ्रंट पेज पर तीन कॉलम की एक खबर है और उसमें बताया गया है कि तेलुगु देशम पार्टी ने फिलहाल फैसला किया है कि वो NDA से अलग नहीं होगी।
थोड़ी नाराजगी थी लेकिन पहले।
जी नाराजगी थी, और वो नाराजगी भी हम बता देते हैं। नाराजगी थी कि जो आम बजट पेश किया गया 1 फरवरी को उसमें तेलुगु देशम पार्टी का कहना था कि आंध्र प्रदेश को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया, उसका बिल्कुल जिक्र ही नहीं किया गया, और इस वजह से पार्टी नाराज थी और ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद वह गठबंधन से अलग हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल उन्होंने ये फैसला नहीं किया है। कल जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के घर में बैठक हुई थी और वहाँ पर ये फैसला लिया गया कि वो फ़िलहाल तो NDA के साथ बने रहेंगे लेकिन संसद के भीतर और बाहर इस बात का विरोध लगातार करेंगे कि बजट में उनके प्रदेश का ख्याल क्यों नहीं रखा गया। और एक जानकारी और दे दें कि दक्षिण भारत में तेलुगु देशम पार्टी BJP की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है और लोकसभा में TDP के इस समय 16 सदस्य हैं,
मायने रखते हैं।
जी, इसके अलावा हम नवभारत टाइम्स को देखें, हिंदी अखबार है, और उसने अपने फ्रंट पेज पर सबसे बड़ी लीड खबर जो बनाया है वो नोएडा फर्जी मुठभेड़ मामले को लेकर उन्होंने लीड खबर बनाई है। अखबार लिखता है कि नोएडा फर्जी मुठभेड़ मामले में दरोगा को गिरफ्तार किया गया है। खबर में बताया गया है कि नोएडा सेक्टर 122 में शनिवार रात को हुए कथित एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि इस घटना में ट्रेनी दरोगा ने प्रमोशन पाने के लिए जिम ट्रेनर को गोली मार दी थी। और साथ ही साथ इस खबर में यह भी बताया गया है कि गोली मारने के बाद पुलिस वालों ने उस घायल युवक को लगभग 45 मिनट तक सड़कों पर घुमाया और उसके बाद सेक्टर 62 के फोर्टिस अस्पताल में उसको छोड़ दिया। वैसे हालांकि दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि ये एनकाउंटर की खबरें बिल्कुल झूठी हैं और ये आपसी रंजिश का कोई मामला है।
यानी सच पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है, जो हटेगा तो सच्चाई सामने आएगी। नवीन नेगी, दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा आप अभी, और खबरें मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में है अभी।
जी, मेरे हाथ में एक और खबर है और बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा भी हमारे सामने आया है जो थोड़ा सा परेशान करने वाला भी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने फ्रंट पेज पे खबर छापी है और अखबार लिखता है कि जो लोग NRI शादी करते हैं, मतलब NRI लड़कों से जो लड़कियां शादी करती हैं वो बेहद परेशान रहती हैं, और एक आंकड़ा निकल के आया है कि हर 8 घंटे में वो अपने घर में मदद के लिए फ़ोन करती हैं। ये आंकड़े दरअसल निकल के आए हैं विदेश मंत्रालय को जो शिकायतें प्राप्त हुई थी 1 फरवरी 2015 से 30 नवंबर 2017 के बीच, और ये शिकायतें 1064 दिनों में 3328 शिकायतें विदेश मंत्रालय को प्राप्त हुई।
ये वो शादियां हैं जो 7 समंदर पार जाकर हुई हैं।
जी, लेकिन खुश नहीं रहती हैं महिलाएं, वहां जाके अकेलापन का शिकार हो जाती हैं और बुरा बर्ताव भी उनके साथ किया जाता है।
बहुत शुक्रिया नवीन, समय अब इजाज़त नहीं दे रहा है। श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कई बार हम तब तक नहीं जागते जब तक कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो हमें झकझोर कर रख दे। یہ سستی شاید انسانی سوبھاؤ کہا جا سکتا ہے، لیکن جب نیند ٹوٹتی ہے تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پاکستان میں بھی کافی دیر کے بعد لوگوں کی زبان پر لگے تالے آخرکار ٹوٹنے لگے ہیں۔ سنیے وسط اللہ خان کی زبانی۔
ویسے تو قتل، بلاتکار اور اپہرن کی اتنی گھٹنائیں گھٹ رہی ہیں کہ اب یہ مدے کسی کے لیے بھی آشچرجنک نہیں رہے، مگر ان میں سے کوئی ایک گھٹنا ایسی بھی ہو جاتی ہے جو سماج کی سوچ میں دراڑیں ڈال دیتی ہے۔ ایسے ہی دو قتل پاکستان میں پچھلے مہینے ہوئے۔ ایک تو لاہور کے قریب بلے شاہ کے شہر قصور میں 7 ورش کی زینب کا ریپ کے بعد قتل۔ اس نے پاکستانی سماج میں یہ تبدیلی پیدا کی ہے کہ اب لوگ ایسی گھٹناؤں کو اپنے سینے، گھر، خاندان، برادری اور محلے میں دبانے اور چھپانے کی بجائے سامنے لا رہے ہیں اور کھل کے بات کر رہے ہیں۔ پہلی بار کئی سیلیبریٹیز منہ کھول رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، اور لوگ ان کا پہلے کی طرح ہنسی ٹھٹا کرنے کی بجائے ان کی بات دھیان سے سن رہے ہیں۔ لاہور میں جب ایک باپ نے اپنی 14 ورش کی بیٹی کا ریپ کیا تو ماں نے اسے چھپانے کی بجائے اپنے پتی کے خلاف تھانے میں خود جا کے ریپ کی ایف آئی آر کٹوا دی۔ ایبٹ آباد میں جب ایک محلے والے نے ایک 11 سال کے بچے کو باتوں میں لگا کے لاہور لے جانے کی کوشش کی تو ایبٹ آباد پولیس کی ڈی ایس پی اسما نقوی نے اس بچے کی تصویر ترنت واٹس ایپ کے ذریعے ہر ناکے اور ایبٹ آباد سے لاہور جانے والی ہر بس کی کمپنی کو بھیج دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اپہرن کرنے والا راستے میں ہی پکڑ لیا گیا۔ زینب کے قتل کے بعد کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ اخباروں میں ریپ یا ریپ کی کوشش کی 8 سے 10 خبریں نہ چھپتی ہوں۔ پہلے ایک ہفتے میں ایسی 2 یا 3 خبریں ہی چھپتی تھیں۔ اب بچے یا بچی کے گھر والے ٹی وی کیمروں کے سامنے کھل کے بات کر رہے ہیں۔ ایک مہینے پہلے وہ گول مول بات کرتے تھے یا بالکل نہیں کرتے تھے۔ اب ٹی وی ٹاک شوز میں یہ بھی ایک اہم مدعا ہے کہ بچوں کو کیسے بچایا جائے، انہیں اسکول میں اس بارے میں کیا پڑھایا اور سکھایا جائے، اور گھر والوں کو بچوں کی سرکشا کے بارے میں کس طرح کی بنیادی جاگروکتا دی جائے، اور ڈی این اے پروفائلنگ کو لازمی بنایا جائے۔ دوسرا قتل کراچی میں نقیب اللہ آفریدی کا ہوا، جو اب ایک آندولن بن چکا ہے۔ نقیب اللہ کو طالبان آتنکوادی کہہ کے پولیس کرمچاری راو انوار نے 3 اور لوگوں سمیت انکاؤنٹر میں مار دیا۔ جب شور مچا تو انکوائری ہوئی اور نقیب اللہ بے گناہ نکلا۔ اب پولیس اور نقیب اللہ کے ہمدرد راو انوار کو تلاش کر رہے ہیں۔ راو انوار نے 250 سے ادھک ایسی وارداتیں کی۔ اب ہر مرنے والے کے وارث آہستہ آہستہ سامنے آ کے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب عدالت موجود ہے تو انکاؤنٹر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس اندھیر نکری میں کسی بھی شہری کو ذاتی انتقام یا کسی کے کہنے پہ یا رشوت نہ دینے پہ آتنکوادی سمجھ کے مارا جا سکتا ہے؟ تھینک یو زینب اور تھینک یو نقیب اللہ، تم تو چلے گئے مگر ہماری زبان پہ لگا تالا کھول گئے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تالا کہیں دوبارہ نہ لگ جائے۔
پاکستان سے وسط اللہ خان کی ساپتاہک ڈائری کے بعد اب ہے باری کھیل کھلاڑی کی۔
کھیل اور کھلاڑی کارکرم کے ساتھ میں ہوں آدیش کمار گپت۔
50 اوور کا میچ تھا اور 21ویں اوور میں 9 وکٹوں سے یہ مقابلہ جیت لیا بھارت نے، بتائیے
کیا پدی اور کیا پدی کا شوربا۔ کچھ ایسی ہی حالت بھارت نے کل دکشن افریقہ کی سینچرین میں کھیلے گئے دوسرے ایک دیوسیہ انتراشٹریہ کرکٹ میچ میں کی۔ بھارت کے سامنے جیت کے لیے 119 رنوں کا لکشیہ تھا جو اس نے سلامی بلے باز شکھر دھون کے ناباد 51 اور کپتان ویراٹ کوہلی کے ناباد 46 رن کی مدد سے 20.3 اوور میں ہی کیول 1 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا۔ اس سے پہلے ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کی دعوت پا کر میزبان دکشن افریقہ کی پوری ٹیم 32.2 اوور میں ہی محض 118 رن پر پیویلین لوٹ گئی۔ جے پی ڈومینی اور خایا زونڈو نے 25-25 رن بنائے، یوزویندر چہل نے 22 رن دے کر 5 اور کلدیپ یادو نے 20 رن دے کر 3 وکٹ حاصل کیے۔ پلیئر آف دا میچ بنے یوزویندر چہل نے کہا کہ بھارت اے کے لیے اس سے پہلے دکشن افریقہ کا دورہ ان کے کام آیا۔
Obviously like a first main tour, so I'm enjoying bowling here because we couple years back अनुभव
काम आया चहल के, लेकिन जब भारत को जीत के लिए केवल 2 रनों की जरूरत थी तब मैदानी अंपायर ने लंच का ऐलान कर जैसे रंग में भंग डाल दिया। गुस्साए कमेंटेटर बोले,
That's the end of the over. They need 2 runs to win. No, this doesn't work. This is laughable. That's what it is. You cannot do this.
खैर, खेल का एक रंग ये भी है। लेकिन कल का संडे तब सुपर संडे बनते बनते रह गया जब इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में अमेरिका की 5वीं वरीयता हासिल बिवेन झेंग ने शीर्ष वरीयता हासिल भारत की पीवी सिंधु को 21-18, 11-21, 22-20 से हरा दिया। और अब समीक्षा। क्या कप्तान विराट कोहली की नंबर 4 पर बल्लेबाज को लेकर समस्या समाप्त हो गई है और तैयार है अगले विश्व कप की टीम?
जीत लिया ये टेस्ट मैच भारत ने, विराट कोहली और उनकी टीम ने कमाल कर दिखाया है जोहानिसबर्ग में।
पहले तो भारत ने जोहानिसबर्ग में खेले गए 3रे और आखिरी टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 63 रन से हराकर सीरीज को 2-1 कर एक तरफा 3-0 होने से बचाया और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 6 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबलों में हराकर अपना खोया रुतबा हासिल किया। भारतीय टीम का ये आत्मविश्वास अपने गेंदबाजों के करिश्माई प्रदर्शन के बाद लौटा जिसकी तारीफ कप्तान विराट कोहली ने खुले दिल से की।
बॉलर्स आउटस्टैंडिंग, 60 विकेट लेना सीरीज में हमने ऐसा पहले नहीं किया है कभी अवे फ्रॉम होम, और एज अ कैप्टन मुझे बहुत खुशी है उनके लिए और पूरी टीम के लिए।
वैसे टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट सीरीज में कामयाबी हासिल कर कोच रवि शास्त्री की आवाज का खोया दमखम भी लौटाया।
टीम के थिंक टैंक जो था वो बोले कि विल प्ले फायर विद फायर, अगर वो 5 फास्ट बॉलर खेलेंगे हम 5 खेलेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है।
आवाज में जोश दिखा कोच रवि शास्त्री की तो विराट कोहली के दिल की कश्मकश को भी कम किया अजिंक्य रहाणे ने, जिन्होंने पहले एक दिवसीय मुकाबले में डरबन में 79 रन बनाए और इसके साथ ही उन्होंने अपने ऊपर उठ रहे तमाम सवालों का जवाब भी दे दिया। उनका जवाब ऐसे समय में आया जब उनके टीम में खेलने और खिलाए तो कहां खिलाए जैसे सवाल खुद कप्तान विराट कोहली उठा रहे थे।
अजिंक्य थर्ड ओपनर के तौर पर देखे जाएंगे, उन्होंने वर्ल्ड कप में 4 नंबर पे बैटिंग करी है तो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाते हैं नंबर 4 के, और बाकी मनीष है, श्रेयस है, केदार नंबर 5 और 6 के प्लेयर हैं, हार्दिक नीचे खेलने वाले, एमएस तो ऑब्वियसली हैं।
लेकिन क्या अजिंक्य रहाणे का ये आखिरी इम्तिहान है और क्या अगले साल होने वाले विश्व कप की टीम को लेकर जैसा खुद विराट कोहली ने कहा वही टीम है? क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
जैसे विराट ने कहा कि लगभग सब पोजीशन को ब्लॉक हो चुकी है, एक नंबर 4 के लिए प्रॉब्लम था, लेकिन जिस तरह से रहाणे ने खेला दूसरी मैच में, और ना भूले कि 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जाएगा जहां पर भी बल्लेबाजों के लिए काफी दिक्कत हो सकती है, रहाणे भी खुद अच्छे स्ट्रोक्स खेल लेते हैं, शायद एक और इनिंग अगर ऐसी हो जाए तो लगभग उनकी जगह जो है वो बुक हो जाएगी।
अगर विराट कोहली की चिंता विश्व कप में खेलने वाली टीम को लेकर दक्षिण अफ्रीका में ही समाप्त हो जाती है तो इससे बेहतर शायद ही कुछ हो। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और इसके साथ ही भारत में बजने वाले हैं 7:00 वक्त हो चला है कार्यक्रम के समापन का, लेकिन चलते चलते खास खास खबरें एक बार फिर सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। पश्चिमी अफ्रीका में गिनी की खाड़ी में बेनिन तट से तेल का एक टैंकर चालक दल के 22 भारतीय नागरिकों समेत लापता हो गया है। गुरुवार के बाद इस टैंकर के साथ कोई संपर्क नहीं हो पाया। भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय सेना का कहना है कि नियंत्रण रेखा के पास राजपुरा सेक्टर में रविवार को पाकिस्तानी सेना की ओर से की गई गोलीबारी में भारतीय सेना के 1 अधिकारी समेत 4 जवान मारे गए हैं। मालदीव में राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। रविवार को मालदीव की सड़कों पर विपक्षी पार्टी के नेताओं ने अपने 9 सांसदों को रिहा करने के लिए नारेबाजी की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इन 9 सांसदों को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तरी सीरिया के कुर्द नियंत्रण वाले इलाके अफरीन में रविवार को हजारों की संख्या में लोगों ने तुर्की सैन्य कार्यवाही के विरोध में प्रदर्शन किया। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे नवीन नेगी, स्टूडियो का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार और फेसबुक के जरिए हमें आप तक पहुंचा रही थी कमलेश। अगला प्रसारण दिन भर भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए अनुमति। bbchindi.com है आपके साथ।